سرخیوں میں، कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल और पत्रकार सिद्धार्थ सिंह।
भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ का घोटाला सामने आया है। बैंक के अपने एफर्ट से ही ये घोटाला सामने आया है। इसकी बैंक ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में शिकायत भी कर दी है और आगे की कार्रवाई करते हुए बैंक ने अपने 10 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया है। इसमें जाने माने हीरा व्यापारी नीरव मोदी का भी नाम सामने आ रहा है। यामिनी जी, ये पूरा घोटाला किस तरह से हुआ?
जनवरी 16 के आसपास बैंक के पास एक कंपनी आई, उसने कहा कि आप हमें एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू कर दीजिए क्योंकि हमारे पास ये इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है, हमें क्रेडिट लेना है, इसलिए आप हमें ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू कर दीजिए। जब उसने अप्लाई किया तब बैंक ने कहा कि आपके पास तो कोई सैंक्शन लिमिट नहीं है, तो आप 100% कैश मार्जिन सबमिट कर दीजिए तो हम आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे देंगे। कंपनी ने कहा कि आपने पिछले इतने सालों में तो हमें ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दी है, तो आप क्या प्रॉब्लम हो गई है, आप हमें क्यों नहीं दे देते? तब बैंक ने अपने रिकॉर्ड्स खंगाले और देखा कि उसके अंदर कोई लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं दी गई है। फिर पाया गया कि कुछ फ्रॉडुलेंट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू की गई जिनके बेसिस पे जो अंतर्राष्ट्रीय दर है वहां पर जो इंडियन बैंक्स हैं जैसे एक्सिस बैंक थे या अलाहाबाद बैंक थे हांगकांग के अंदर, उन्होंने फॉरेन करेंसी में इसी कंपनी को जो नीरव मोदी की कंपनी है और कंपनीज हैं उनको फॉरेन करेंसी में लोन मुहैया कराया गया। जब हम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की बात करते हैं तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बैंक कहता है कि अगर ये कस्टमर पे नहीं कर पाया तो मैं इसकी जगह पे करूंगा। तो इस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बेसिस पे इस कंपनी ने काफी ज्यादा पैसा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय बैंकों से उठाया और जब देखा गया कि ये इतने सालों से चल रहा था तो ये पता नहीं लग पाया क्योंकि वो एक ही जो बैंक मैनेजर थे, पाया गया कि वो बिना डॉक्यूमेंट्स लिए बिना बैंक के अंदर रिकॉर्डिंग किए ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करे जा रहे थे और जिसके बेसिस पे ये नीरव मोदी की कंपनी जो और भी 5-6 कंपनी
का
नाम आ रहा है वो कंपनीज पैसा उठाए जा रही थी बाजारों से और उस पैसे के बारे में इंडियन बैंक को पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो एक स्विफ्ट ट्रांसफर के थ्रू जो है ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज कर रहे थे। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट तो ऑथराइज नहीं थी, इस वजह से पीएनबी कह रहा है कि एक फ्रॉड कंडक्ट किया गया और ये कंपनीज के साथ मिलकर के ये फ्रॉड कमिट किया गया है।
जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जिसकी बात हो रही है ये हीरा व्यापारी नीरव मोदी है उनकी कंपनी को इशू किया गया बिना किसी कोलेटरल के।
पीएनबी ने इशू ही नहीं किया, वो कह रहे हैं कि हमने ये इशू ही नहीं किया, ये इन्होंने बैंक डेप्यूटी मैनेजर के साथ मिलकर के एक फ्रॉडुलेंट तरीके से लिया और उस फ्रॉडुलेंट तरीके से उठा करके फिर दूसरे भारतीय बैंकों के पास पहुंचे और वहां से क्रेडिट उठाया और वो क्रेडिट दूसरे भारतीय बैंकों ने हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया है जिसके अंदर अब लायबिलिटी पीएनबी बैंक की बन गई है क्योंकि जो पीएनबी बैंक कह रहा है वो फ्रॉडुलेंट है पर बाकी बैंकों ने ये जानकर के कि वो जेन्युइन है उन्हें वो क्रेडिट दिया है।
हाँ, क्योंकि स्विफ्ट के सिस्टम से उन्होंने उसको ऑथेंटिकेट भी किया,
ऑथेंटिकेट किया था जो ट्रांजैक्शंस फिर पता नहीं चली, वो मेन कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर आई नहीं कि ऐसा कोई क्रेडिट दिया गया है किसी को या किसी को मिला है।
हमने कल ये भी सुना कि जो वित्तीय मामलों के सचिव हैं श्री राजीव कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के फ्रॉड पर जो उन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा ये अपने आप में एक अकेला मामला है और चूंकि सरकार की तरफ से ही ये बैंकों को निर्देश है कि जो भी उनके यहाँ इस तरह के ट्रांजैक्शन हैं उन पे वो सख्ती से कदम उठाएं और शायद उसी क्रम में ये जो फ्रॉड है या ये इस तरह का घोटाला है जो सामने आया और उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तान के जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कोई खतरा नहीं है और वो आशा करते हैं कि ये जो है कंटेंजियन भी नहीं होगा। आप इसको किस तरह से लेते हैं?
देखा जाए तो ये काफी बड़ा घोटाला है, पीएनबी के ऊपर काफी बड़ी लायबिलिटी आती है माना जाए अगर वो एलओयू जो है फ्रॉडुलेंट नहीं फाइंड किए जाते या उसमें गलती पीएनबी की देखी जाती है और बाकी बैंकों को ये पैसा देना पड़ेगा पीएनबी को, तो जो है काफी बड़ा पैसा होगा क्योंकि ये एक बड़ा बैंक है, सेकेंड लार्जेस्ट लेंडर बैंक है, स्टेट रन बैंक है, तो माना जा रहा है इससे पब्लिक सेक्टर की हेल्थ जो पहले से ही काफी खराब है एनपीएस के कारण, जिसमें हम कह रहे हैं 10,000 करोड़ एनपीएस हैं और जिसमें अब 88,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइजेशन हो रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, उसमें माना जा रहा है अगर ऐसे कोई घोटाले आते हैं तो और हेल्थ खराब हो जाती है। पर क्योंकि ये उन बैंकों से है जिन बैंकों के अंदर इस पीएनबी का नॉस्ट्रो अकाउंट्स थे, उन भारतीय बैंकों को जैसे यूनियन बैंक है, अलाहाबाद बैंक है, एक्सिस बैंक है या SBI बैंक है, जो उनका एक्सपोजर है वहां तक असर करता है। क्योंकि जैसे अगर आप देखें यूनियन बैंक का एक्सपोजर 2300 करोड़ के आसपास है, अलाहाबाद बैंक का 2000 करोड़ के आसपास है और SBI का 960 करोड़ के आसपास माना जा रहा है, तो ये एक्सपोजर काफी बड़ा है, पर उतना भी नहीं है कि जो ये बाकी बैंकों में जाएगा। तो ऐसा नहीं माना जाता कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ेगा, पर हाँ अगर आप फ्रॉड के मामले में देखें तो ये काफी बड़ा फ्रॉड है। और अगर नीरव मोदी कहते हैं कि वो पैसा देने को तैयार हैं, जिसमें अभी आशा जताई जा रही है कि 5000 करोड़ तो वो कह रहे हैं कि वो दे देंगे, पर PNB कह रहा है कि आप एक रिटर्न प्लान दीजिए कि आप किस तरीके से पैसा देंगे और कितना कितना कब कब देंगे, तो देखा जाए अगर वो होता है तो वो बेहतरी के लिए होगा।
यामिनी जी, एक आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जो पूरा मसला है ये 2011 का है, तकरीबन 7 साल निकल जाते हैं जिसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आता है, तो क्या ये हमारी पूरी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, जो प्रोसेसेस हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है? क्योंकि इतना बड़ा घोटाला, 3-4 बैंक उसमें इन्वॉल्व है, पंजाब नेशनल बैंक के अकेले किसी एक ब्रांच से हो रहा, बॉम्बे की एक ब्रांच से हो रहा है, RBI इसके अलावा ऑडिट करती है समय समय से, देर आर चेक्स एंड बैलेंसेस, तो इन सब सिस्टम्स को वो धता बताते हुए एक या दो व्यक्ति मिलकर इतना बड़ा फ्रॉड रच देते हैं।
जी, माना जाए तो अभी 10 लोगों का नाम आया है इस पूरे फ्रॉड में, जो माना जा रहा है कि PNB के स्टाफ के लोग थे जिनका इन्वॉल्वमेंट था, और भी लोगों का नाम आ सकता है, और कंपनी के जो लोग थे उनका नाम आ रहा है। तो जब घोटाला होता है तो ज्यादातर कुछ लोगों की करनी की वजह से ही होता है, पर अगर आप बैलेंसेस और चेक्स की बात करें तो कुछ सवाल PNB पे भी उठाए जा रहे हैं, जैसे कि अगर नॉस्ट्रो अकाउंट्स को क्रेडिट किया गया तो वो स्टेटमेंट्स क्यों नहीं PNB के पास आई, चाहे वो स्विफ्ट ट्रांसफर्स के थ्रू किया गया कि कोर बैंकिंग में नहीं आई, पर आपके अकाउंट्स तो बने ही ना, आपके पास स्टेटमेंट्स आई, अगर वो स्टेटमेंट्स आई तो उसके अंदर क्रेडिट दिखाना चाहिए। और बाकी बैंकों ने भी अगर ये रिवॉल्विंग क्रेडिट की तरीके से दिया गया, तो इतने सालों से जब क्रेडिट दिया गया, अगर कंपनी वापस बैंक के पास आ रही है क्रेडिट के लिए, तो कंपनी को किसी ने तो आश्वासन दिया ही ना कि उनको वो क्रेडिट दिया जा रहा था। तो इसमें पूरी तरह ये मानना कि घोटाला सिर्फ कुछ 10 लोगों के सेट की वजह से हुआ, तो वो पूरी तरीके से सहमति नहीं बनाता।
आने वाले समय में ऐसी चीजों पर रोक लगे, क्योंकि हमें याद आता है कि 2015 में बैंक ऑफ बड़ौदा में भी तकरीबन 5-6 हजार करोड़ का घोटाला इस तरह से उजागर हुआ था, और अब पंजाब नेशनल बैंक, हालांकि आज बैंक प्रबंधन की तरफ से जो MD सुनील मेहता सामने आए और उन्होंने कहा है कि बैंक में क्षमता है कि वो इस तरह के जो घोटाले हैं उनसे उबर सके, उसके एम्प्लॉयज के ऊपर वो सख्त कार्रवाई करेंगे, साथ ही इस रकम की वसूली के लिए भी जो भी उचित कार्रवाई है वो बैंक तुरंत कर रहा है। हालांकि जब से इसका उजागर हुआ है तकरीबन जनवरी के तीसरे सप्ताह से और उन्होंने CBI में शिकायत भी की है, तो ऐसे मामले आगे ना हो उनके लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इन चीजों पर रोक लग सके और ताकि जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है उसके ऊपर इस तरह के प्रश्न ना लगे?
तो RBI की रेगुलेशंस होती हैं या जो बैंकों को डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं उनकी गाइडलाइंस साफ तरीके से रखी जाती हैं, पर क्योंकि मैनेजर्स जो है या जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो उनको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते, वो क्रेडिट पे क्रेडिट देती जाती है, दर नजार करते हैं उनको, इस वजह से जो है ये घोटाले हुए जाते हैं। इसमें PNB ने ये भी कहा है कि अगर हमने ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दी थी तो शिपमेंट जो 90 दिन तक आने के लिए था उसके लिए दी थी, आपने उससे ज्यादा समय में भी शिपमेंट आ रहा था तो आपने क्यों ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट किया? ये माना जाता है कि जब बैंक मैनेजर्स ठीक तरीके से जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करते या ठीक तरीके से रिपोर्टिंग नहीं करते तो वहां पे ये फ्रॉड्स नजर आते हैं। इसमें रेगुलेटर की पूरी तरीके से गलती नहीं होती, क्योंकि रेगुलेटर के पास तो जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी वो उसके हिसाब से ही कार्रवाई कर सकता है। जैसे बैंक के लोगों के पास जब इन्फॉर्मेशन पहुंची रिटायरमेंट के बाद, गोकुलनाथ की रिटायरमेंट जो मई 2017 में हुई उसके बाद उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची, वो उसके बाद ही कार्रवाई कर सकते थे, तब तक सब कुछ उनकी नजर में था और वो देख रहे थे, इसलिए किसी को पता नहीं चला,
इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जा रही,
इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जा रही थी और किसी को पता नहीं चला कि ये ऐसा हो सकता है या ऐसा हो रहा है।
चाहे बैंक प्रबंधन हो या रिजर्व बैंक जो कि रेगुलेटर है, तो उन्हें भी इसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी, हमको फॉरवर्ड लुकिंग सिस्टम ऐसे बिल्ड करने होंगे ताकि इस तरह के घोटाले आगे ना हो।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो नॉस्ट्रो अकाउंट्स में क्रेडिट हुए हैं या नॉस्ट्रो अकाउंट्स में कोई ट्रांजेक्शन्स हुई हैं तो वो ट्रांजेक्शन्स नजर आती हैं, अगर हैं तो वो क्यों नहीं नजर की गई और उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये सवाल जरूर उठता है। इसको देखते हुए रेगुलेटर की भी जिम्मेदारी है और PNP की भी जिम्मेदारी है कि वो के कि बाकी के बैंकों का जो पैसा है वो उन्हें वापस मिले। पीएनबी अपना पल्ला पूरी तरीके से नहीं झाड़ सकती ये कहकर कि ये तो इम्प्लॉयज की और उनकी कनाइवेंस की वजह से फ्रॉडुलेंट एक्ट हुआ है, इसलिए इसमें हमारा कोई वो नहीं है, इसलिए हम ये पेमेंट नहीं करेंगे। पीएनबी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी उस चीज के लिए।
यामिनी जी, सिर्फ फ्रॉड को लेकर पंजाब नेशनल बैंक की जो प्रेजेंट स्टेट है उसके ऊपर आप इस फ्रॉड का क्या असर देखती हैं? पंजाब नेशनल बैंक की जो वर्किंग है, उसकी जो साख है, और आने वाले समय में पंजाब नेशनल बैंक के जो रिजल्ट्स हैं या उनके जो फाइनेंशियल्स हैं, उस पर पूरे जो ये एपिसोड है फ्रॉड का और काफी बड़ा है, तो उसका आप किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं? बिकॉज पंजाब नेशनल बैंक भी वो सरकारी बैंक है एनपीए जिसके काफी बड़े हैं, एनपीए की संख्या भी पंजाब नेशनल बैंक की काफी बड़ी है, तो उसके ऊपर आप इसका किस तरह का असर देखते हैं?
देखिए, अभी मार्केट में जैसे ही ये न्यूज गई है वैसे इनके जो शेयर्स हैं वो गिर गए हैं, 18% के आसपास गिरे हैं और माना जा रहा है कि और गिरावट हो सकती है। तो लोगों ने तो पहले ही शेयर्स के अंदर प्राइसेस उनकी कम कर दी है। अगर आप देखें रिजल्ट्स के अंदर तो इन्होंने अभी कहा है कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, हम इसे पूरी तरीके से ये लायबिलिटी नहीं मान रहे, हम पहले इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आने की वेट करेंगे और जितनी फिर हमारी एक बोनाफाइड जिसे कहते हैं कि जो हमारी नैतिकता में मॉरेलिटी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी और जो रेगुलेशंस हमें कहेंगी, जो आरबीआई हमें कहेगी, हम उसके हिसाब से उसकी कमिटमेंट को पूरा करेंगे। अगर उनको ये कमिटमेंट पूरी करनी पड़ती है क्योंकि इनकी तरफ से ही ये एलओयूज जारी हुए हैं और दूसरे बैंकों के पास कोई तरीका नहीं था ये निकालने का कि ये आपके जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि वो तो बैंक की तरफ से ही आए हैं, चाहे वो इम्प्लॉयज ने फ्रॉडुलेंटली लिए हैं या नॉन फ्रॉडुलेंटली। अगर पासवर्ड्स में ब्रेकेजेस हुए हैं तो वो आप ही के सिस्टम की गलतियां हैं, वो बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं पता चल सकती, तो वो तो अपना पैसा आपसे ही वसूलेगा, किसी और से नहीं वसूल सकता। तो इसलिए पीएनबी के ऊपर काफी असर पड़ेगा और प्रॉफिट्स काफी नीचे जाएंगे।
यामिनी जी, यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि जब भी इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं या जो जांच एजेंसियां जो इस पर काम करती हैं, जो सच्चाई है उसको सामने आने में काफी समय लग जाता है, तो आपको नहीं लगता है जैसे कि हमने एनपीए रिकवरी के लिए मैकेनिज्म्स को एकदम अपडेट किया है, एनसीएलटी लेके आया, इंसॉल्वेंसी कोड आया, और अभी हाल ही में आरबीआई ने एक और एनपीए रेजोल्यूशन के लिए एक नई गाइडलाइंस इशू की, तो इसी तरह से बैंक्स में जो फ्रॉड्स होते हैं उन पे भी तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत एक्शन हो, तुरंत नतीजे सामने आए, इस पर भी कुछ तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत है?
जी, ये जरूरी है। विकसित देशों में देखा जाता है कि कोई भी जब फ्रॉड होता है तो इमीडिएटली लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है और उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, क्योंकि उनके अगेंस्ट एक्शन इमीडिएटली ले लिया जाता है, चाहे वो सस्पेंशन हो, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो या किसी भी चीज में उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, तो लोगों के अंदर एक डर होता है कि वो गलत काम ना करें, क्योंकि वो डर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोर्ट में मामला चला गया फिर सालों साल चलता रहेगा, जब तक नतीजा आएगा मुझे तो शायद कुछ देना ही ना पड़े और शायद कुछ पैसा उनकी तरफ निकले ही नहीं, तो इस वजह से वो कहते हैं हो जाने दीजिए, कर लेने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए लोग इन फ्रॉड्स के ऊपर इतना संभल करके नहीं चलते, वो कहते हैं फ्रॉड हो गया तो कोई बात नहीं, अब कुछ समय में नतीजे नजर आएंगे। तो ये जरूरी है कि कोर्ट्स जल्द से जल्द फैसले दें और जो रेगुलेटर्स हैं वो एक्शंस जिनके अगेंस्ट लेने होते हैं वो जल्दी लें। जैसे पीएनबी ने भी 10 लोगों का नाम लिया है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिए गए हैं, तो एक मैसेज जाता है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो उसके नतीजे गलत ही होंगे।
हम आशा करते हैं कि जांच एजेंसियां और बैंक खुद इस प्रकरण से सबक लेते हुए बहुत हार्ड एक्शन लेंगे और आशा करते हैं कि ऐसे फ्रॉड आगे ना हो। धन्यवाद।
धन्यवाद।
सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल और पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। एफएम गोल्ड के श्रोताओं, अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय हम सुर्खियों में एक और अंक के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।